कल हम चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला और गुंज माला भेंट की थी और उनकी पूजा करने की सही विधि और भाव का उपदेश भी दिया था। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं किस तरह गोवर्धन का दर्शन करके, उनकी परिक्रमा करके हम सबको सही मार्ग बतला रहे थे, गोवर्धन के प्रति कौन सी दृष्टि हमारी होनी चाहिए ये भी हम सुन रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कभी गोवर्धन के ऊपर चढ़े नहीं और उनके पदचिन्हों में चलते हुए रूप गोस्वामी भी चढ़े नहीं, परंतु गोवर्धन के ऊपर विराजे गोपाल जी ने चैतन्य महाप्रभु को भी और रूप गोस्वामी के साथ साथ अन्य गोस्वामी को भी नीचे आकर दर्शन दिया मुगलों के आक्रमण के बहाने पर। इस प्रकार से गोवर्धन की महिमा भी हम सुन रहे थे, किस तरह गोवर्धन का प्राकट्य गोलोक वृंदावन में हुआ, किस तरह से गोलोक वृंदावन से गोवर्धन का प्राकट्य इस भौतिक जगत में हुआ और गोवर्धन के महिमा के बारे में भी हम कुछ सुन रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बहुत खेल खेलते हैं, गायों को चराते रहते हैं इधर से उधर, और इस तरह से गोवर्धन के रमणीय स्थानों में इधर उधर घूम फिर के काफी समय बीत जाता है। और संध्या का समय जब निकट आता है तो भगवान कृष्ण के मन में ये विचार आता है कि हमें अभी वापस लौट के जाना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण दिन भर वन में रहते हैं वृंदावन में, तो गोप बालक और गाय वो तो आनंद के सागर में डूब रहे होते हैं, परंतु वृंदावन के निवासी वो तो विरह के अग्नि में जल रहे होते हैं। हर एक क्षण उनको एक युग के बराबर प्रतीत होता है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम, वह कहते हैं कि जब आपको देखते नहीं हो पश्यताम, तो क्या होता है कि एक युग जो है वो, एक क्षण जो है वो युग के समान प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से सारे वृंदावन के भीतर केवल कृष्ण ही कृष्ण समाये हुए हैं। जब ग्वाल बाल आनंद ले रहे होते हैं तो ब्रिजवासी, अन्य ब्रिजवासी विरह की अग्नि में जल रहे होते हैं, और जब श्री कृष्ण लौट कर वापस आते हैं तो सारे ब्रजवासी बड़े खुश हो जाते हैं, परंतु ग्वाल बाल वो अभी विरह की अग्नि में जलने लगते हैं, क्योंकि अब रात भर उनको श्री कृष्ण का संग नहीं मिलने वाला। दिन भर कृष्ण के साथ में रहे, वो कृष्ण से बहुत क्रीड़ा की और इतना संग प्राप्त करने के बाद दिन भर जितना संग कोई भी अन्य ब्रजवासी नहीं प्राप्त करते, ना गोपियां ना वरिष्ठ गोप गोपी जो वात्सल्य रस में प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। तो अब विरह जो आने वाला है रात के लिए, उस समय गोप बालकों को अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, फिर ऐसे सो ही जाते हैं, फिर कृष्ण के बारे में स्मरण करते करते, और फिर स्वप्न में भी कृष्ण को देखते हैं कैसे आगे चल के वो कृष्ण के साथ लीला करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं ग्वाल बाल तरह तरह के लीलाओं में मग्न रहते हैं श्री कृष्ण के साथ, तरह तरह के क्रीड़ाएं उनकी होती हैं और अपने कलाओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं वो श्री कृष्ण के लिए। कोई बच्चा अच्छी तरह से नृत्य कर सकता है, कोई बच्चा अच्छी तरह से गा सकता है, कोई बालक जो है वो अच्छी तरह से कोई एक विशेष संगीत का वाद्य बजा सकता है, तो कोई किसी प्रकार से अच्छी कविता बोल सकता है, या कोई बहुत मधुर भाषा में बोल सकता है, या कोई कुछ चुटकुला सुना सकता है, कोई मजाक की बातें कर सकता है। तो ये सब अपने अपने कलाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं, किसके लिए? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यहां इस जगत में अगर कोई व्यक्ति कलाकार होता है तो वो अन्यों को प्रसन्न तो करता है लेकिन अपने कोई स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, कुछ प्रसिद्धि के लिए, कुछ धन के लिए। लेकिन ग्वाल बाल जब करते थे कृष्ण को प्रसन्न, तब उनके हृदय में जो भावना थी वो शुद्ध थी, और इसलिए जो कला वहां पर प्रकट हुई वो श्रेष्ठ श्रेणी की थी। ये छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी लेकिन फिर भी सुनाएंगे कि जब अकबर के दरबार में तानसेन थे जो कि संगीत के शिरोमणि थे, तो अकबर ने एक बार तानसेन की प्रशंसा की कि भला आपके जैसा और कौन होगा जो गायन कर सकता है, जो शास्त्रीय संगीत कर सकता है। तो तानसेन ने कहा, ऐसे नहीं है, मेरे गुरु हैं जिनका नाम है हरिदास, वो मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। तो अकबर ने कहा, अच्छा मैं भी सुनना चाहता हूं, तो उनको यह निमंत्रण दो कि यहां दरबार में आके गाएं। तो तानसेन ने कहा, वो ऐसे संगीतकार नहीं है जो कि राजा के दरबार में आएंगे गाने के लिए, हमें वहां जाना होगा, वो कहीं पर जाते नहीं है, कोई भी भले बुलाए उनको वो नहीं जाएंगे। हरिदास वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, वृंदावन में रहते थे। तो अकबर ने कहा कि ठीक है हम भी चलेंगे, तो हमें ले जाओ। लेकिन तानसेन ने कहा कि अगर हरिदास आपको देखेंगे तो आपके कहने से बिल्कुल नहीं गाएंगे, तो फिर क्या किया जाए। तो हमेशा की तरह बीरबल वहां थे कोई समस्या का समाधान करने के लिए। तो बीरबल ने कहा, आप ऐसे करो, आप राजा को लेकर तो जाना लेकिन आप अकेले अंदर जाओ, और जब आपके गुरु आपको देखेंगे हरिदास तो कहेंगे अरे अच्छा अच्छा हो गया, आए चलो हम ये राग गाते हैं, और तुम गाना शुरू करो लेकिन जानबूझकर बेसुरा गाना, एक जगह कहीं पर राग में कुछ गलती कर देना, तो इसको सहन नहीं कर पाएंगे हरिदास, और वो डांटेंगे बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, ये राग तक गलत गा रहे हो, फिर खुद गाना शुरू करेंगे। एक बार उन्होंने गाना शुरू कर दिया फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, भाव विभोर होकर वो आगे आगे जाएंगे, और बादशाह अकबर को खिड़की के बाहर खड़े होने के लिए कह देना, तो वो सुनेंगे और समझ पाएंगे कि हरिदास क्या है। तो ऐसे ही किया तानसेन ने, जाके राग भैरवी गाना शुरू कर दिया, कुछ इधर उधर कुछ गलती कर दी, हरिदास के मन में वो बिल्कुल वो टोका उनको मन में ऐसे बहुत धक्का लग गया, अरे अरे हरिद क्या कर रहे हो तानसेन, ऐसे नहीं, तुम नहीं जानते भैरवी कैसे गाते हैं। तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और एक बार शुरू कर दिया तो बस भाव से भाव चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और जैसे और मग्न होते गए वो अब खो गए अपने संगीत में। वो जो भी गाते थे वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही भजन गाते थे। शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य ही है, बल्कि सारे संगीत का उद्देश्य है कि कृष्ण की प्रशंसा हम करें, संगीत का और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आजकल जो भी संगीत पाया जाता है वो सब कृष्ण से विमुख है, सब इंद्र तृप्ति के बारे में है। ज्यादातर जितना भी संगीत सुनाई देता है वो सब पुरुष स्त्री के संबंध के बारे में है, जहां भी आप सुनेंगे। लेकिन ये संगीत का उद्देश्य नहीं है। भागवत में वर्णन है कि भगवान ने नारद मुनि को ये जो सप्त स्वर दिए थे, षड्ज ऋषभ इत्यादि सप्त स्वर, सारे गम पधनी सा, तो इनका उद्देश्य था कि भगवान का गुणगान किया जाए। तो खैर हरिदास ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते करते बाहर अकबर बादशाह खड़े थे, वो भी बिल्कुल इस संगीत में खो गए, उनको पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया है। देखो अकबर की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि उनको इतना अहंकार नहीं था कि वो कहे मैं क्यों जाऊं वृंदावन, उनको आना चाहिए, नहीं वो खुद तैयार हुए आने के लिए, और बाहर खिड़की के बाहर रास्ते पर खड़े होकर सुनने के लिए भी तैयार हो गए। तो कोई अच्छी चीज अगर हमें चाहिए, कोई मूल्यवान चीज चाहिए, तो हमें नम्रता चाहिए। कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई भी चीज प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति अगर नम्र नहीं होगा तो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। हर चीज में, व्यापार में भी चाहिए, आप किसी के ग्राहक के सामने जाएंगे आपको नम्र होना है, नहीं तो नहीं चलेगा। ग्राहक के साथ गुस्से से बात किया तो ग्राहक चले जाएगा, नहीं आएगा। विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करना है तो अध्यापक के सामने उसको नम्रता से पेश आना चाहिए। कुछ भी चीज, मूल्यवान चीज प्राप्त करनी हो हमको जीवन में, हमको नम्र बनना है, ये एक सबक है हमारे लिए। तो अकबर बादशाह ने सुन लिया और फिर बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उनका इच्छा पूर्ण हो गया। फिर तानसेन को बहुत धन्यवाद दिया और वापस चले आए दिल्ली में। फिर दिल्ली में उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन तुम हरिदास की तरह क्यों नहीं गा सकते? तो तानसेन ने कहा, बादशाह हुजूर इसमें एक बात है कि मैं हिंदुस्तान के लिए राजा के लिए गाता हूं, हिंदुस्तान के बादशाह के लिए गाता हूं, परंतु हरिदास जो हैं वो वृंदावन के बादशाह के लिए गाते हैं, यह फर्क है। इसलिए उनके संगीत में जो जादू है, जो रस है, वो मेरे संगीत में नहीं है। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु कृष्ण के लिए की जाती है तो उसमें जो जो कला, अगर वो कला है, कोई संगीत है, कोई चित्र है, कुछ भी हो, उसमें जो रस होगा, उसमें जो श्रेष्ठता होगी, वो अन्यों में नहीं होगा। तो जो ग्वाल बाल यहाँ गाते थे, भले उनको वो कोई संगीत मास्टर के घर में गए नहीं होंगे पढ़ने के लिए, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए, लेकिन जब वो गाते थे तो इस तरह से सुंदर उनकी उनकी बोली हुआ करती थी कि गंधर्व लोग भी शायद विस्मित हो गए होंगे। अब संगीत विशारद तो है गंधर्व, इसलिए यहां पर शास्त्रीय संगीतकारों ने भी अपने अपने नाम गंधर्व के पीछे रखे हैं, है ना, कुमार गंधर्व, बाल गंधर्व, सब नाम है। तो गंधर्व संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये छोटे से ग्वाल बाल जो कि अपनी ओर से गा रहे हैं कृष्ण के लिए, संतुष्ट करने के लिए, तो वो संगीत कहीं श्रेष्ठ है गंधर्वों के संगीत से। और गंधर्वों के संगीत की तुलना में उनको इन ग्वाल बालकों की संगीत बहुत पसंद है। उसी प्रकार से अच्छे भाषण देने वाले लोग और प्रवचन देने वाले लोग कई हो सकते हैं, मधुर भाषा में बोलने वाले लोग कई हो सकते हैं, लेकिन जब ग्वाल बाल अपनी बोली में बोलते थे, जिसमें कई त्रुटियां होती थी, शायद व्याकरण की त्रुटियां हो सकती थी या कोई भी त्रुटियां हो सकती थी, तो कृष्ण को इतना पसंद आता था कि वेदों के मंत्रों के उच्चारण से अधिक वो प्रसन्न होते थे। तो कोई चुटकुला सुनाता, कोई कुछ करता, कोई ऐसे कुछ मुंह करता, कोई ऐसे मुद्रा में धारण करते जिससे कि कृष्ण हंसे, कृष्ण खुश हो जाए। तो इस प्रकार से ये प्रेम का आदान प्रदान चलता था वृंदावन में। दिन भर ऐसे बिताते थे कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। कोई विचार मन में नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे सृष्टि को संभालना है, मुझे बहुत कुछ करना है, इतने वैकुंठ लोक हैं, कुछ विचार नहीं, केवल इस लीला में पूरी तरह से मग्न हो जाते थे। लेकिन फिर कृष्ण को याद आता कि अभी ये तो ग्वाल बाल है, इनके साथ बहुत खेल लिया मैंने, और भी तो खेलना है, इच्छा नहीं होती यहाँ छोड़ के जाने के लिए। जैसे बच्चों को कभी खेलना बंद करने खेल बंद करने की इच्छा नहीं होती उनको, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को भी। परंतु उधर ब्रजवासी राह देख रहे हैं, चिंता कर रहे होंगे कि अब कितना समय हो गया, अभी तक कृष्ण आए नहीं। कृष्ण की राह देखने के लिए जैसे ही सूरज जो है ऊपर से नीचे आता आसमान में, नीचे की ओर आने के लिए उस मार्ग में आ जाता, तो सारे ब्रजवासी जो है उनके मन में चंचलता आने लगती, अंदर बाहर करते। अब कृष्ण आने लगे हैं कि नहीं, आगे बाहर देखते कहीं गोधूली दिख रही है कि नहीं, बांसुरी की आवाज सुन रही है कि नहीं, सुनाई दे रही है कि नहीं, कोई चंद्रशालिका पे जाते अपने छत पे देखने के लिए कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से हलचल मच जाता सारे ब्रज में। तो श्री कृष्ण सोचते, चलो अभी जाना चाहिए, गाय भी इधर उधर चर रहे होते हैं, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि चलो अभी उनको बुलाना चाहिए। तो अपनी बांसुरी लेते हैं और बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, और कभी बांसुरी के माध्यम से बुलाते हैं, कभी अपने शब्दों से बुलाते हैं। हे पद्मे, हे रंगिणी, हे चंदनी, हे हंसी, और इस प्रकार से वो बुलाते बुलाते ही जो आ जाओ, सारे गाय आ जाते हैं। जितने भी हजारों हजारों गाय वहां पर हैं, वो सब दौड़ के आ जाते हैं जगह जगह से, और सब श्री कृष्ण को घेर लेते हैं। अब ये सोचिए कि इतने हजारों हजारों गाय हैं, लाखों गाय बल्कि, सब श्री कृष्ण को घेर रहे हैं जो कि अकेले हैं, तो ऐसे स्वाभाविक है कि कोई गाय जो है वो एकदम दूर होगी और कोई पास में। सब लोग तो, सारे लाखों गाय तो एक साथ कृष्ण के निकट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी भगवान की योग माया से हर एक गाय को ऐसे लगा कि मैं ही श्री कृष्ण के पास हूं, और श्री कृष्ण ही मेरी गर्दन जो है खुजा रहे हैं, मेरे पीठ के ऊपर मालिश कर रहे हैं। हर एक गाय को ऐसे लगा कि केवल मेरे पास कृष्ण है और किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण। ये योग माया है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन लेने के लिए बैठ जाते यमुना के तट पर, तो हर एक ग्वाल बाल को ऐसे लगता था कि श्री कृष्ण केवल मेरी ओर देख रहे हैं, और उनका जीवन का उद्देश्य यही था कि एक बार कृष्ण मेरी ओर देखे और हंसे, बस मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, मेरे जीवन में और कोई आनंद नहीं है। और फिर कोई ग्वाल बाल कृष्ण से कहता, देखो मेरे पास ये लड्डू है, चाहिए? हम बोलते दे दो। कभी कभी कृष्ण बोलते तुम आधा खाकर मुझे दे दो। तो ऐसे सब चलता था। तो हर एक ग्वाल बाल को लगा कि कृष्ण केवल मेरी ओर देख रहे हैं। उसी प्रकार से रास लीला में कितने गोपियां थी, लेकिन हर एक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल मेरे साथ रासलीला कर रहे हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, जबकि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में रथ के सामने आगे पीछे बाएं दाएं और कीर्तन करते थे, अनेक संकीर्तन के दल बनाए हुए थे, तो वो एक दल से दूसरे दल में जाते, थोड़ी देर वहां संकीर्तन करते, फिर तीसरे दल में जाते। लेकिन हर एक दल के भक्त सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु केवल हमारे दल में हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये सब योग माया का प्रभाव है। तो गाय भी हैं, वो भी इसी तरह से सोच रहे थे कि मैं अकेले केवल कृष्ण के पास हूं। और फिर कृष्ण इतने सुंदर हैं, आप तो जानते ही हैं कि गाय भी अपनी आंखें उनसे हटा नहीं सकते थे। केवल अपने आंखों को पूरी तरह से केंद्रित किया उन्होंने कृष्ण के ऊपर। और उधर श्री कृष्ण का सुगंध सौरभ कृष्ण मतलब जिनका बहुत सुगंध है, ऐसा सुगंध जो अतुलनीय है इस जगत में। तो श्री कृष्ण अपने नसिकों से श्री कृष्ण का गंध लेने का प्रयास करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि पशु जो होते हैं गंध से वस्तु को पहचानते हैं, आपने देखा होगा पशुओं को, तो गंध से वो आके अपने सारे श्री कृष्ण के सुगंध को अंदर लेना चाहते थे। अपने जिह्वा से श्री कृष्ण के शरीर को चाटने लगे और इस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियां जो हैं उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर दी। और फिर श्री कृष्ण कहने लगे उनसे नामों से कि हे माताएं, क्या आपने अच्छी तरह से गोवर्धन का घास खा लिया? आपने पेट भर के पानी पी लिया? आपकी प्यास भूख मिट गई? तो चलो अभी वापस जाने का समय हो गया है, क्योंकि आपके बछड़े जो हैं वो अभी भूखे होंगे, अभी तो आपको जाकर उनको सबको दूध पिलाना है, तो चलो अब जाते हैं। तो इस प्रकार से गाय भी तैयार हो जाती। फिर सारे गोप जो हैं वो सारे गवों को इकट्ठे करते, जो कि गोवर्धन के इसमें रमणीय वातावरण में को छोड़ना नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब उनके बछड़ों की याद आ गई तो फिर वो चले, चलो सबको एकत्र करके आगे चले। अब वैसे जो माताएं होती हैं उनको अपने बच्चों का ख्याल ज्यादा आता है और ज्यादा दूर उनसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन कृष्ण के संग में गवों को अपने बच्चों की याद भी नहीं आती थी, लेकिन कृष्ण को याद दिलाना पड़ता कि चलो चलो अभी बछड़े भी हैं ब्रज में, जाके उनको दूध पिलाना होगा। तो फिर सब चलते और जैसे जैसे वो आते, सारी जो उनका जुलूस, बड़ा जुलूस, इतना लंबा, क्योंकि लाखों लाखों गाय, लाखों लाखों ग्वाल बाल, कृष्ण बलराम, और ऐसे चलते चलते सब अपने अपने मस्ती में चलते। कृष्ण वहां बांसुरी बजाते बजाते चलते, तो ग्वाल बाल कोई नाचते, कोई गाते, कोई वाहवा करते, कोई जय जय करते, सब हसमुख अपने अपने मस्ती में चल रहे हैं। सब नाचते कूदते एक दूसरे की मस्ती करते, कोई किसी का कोई खींच रहा है, कोई धक्का मार रहा है, जैसे बच्चे करते हैं, बस आनंद में चल रहे हैं। उधर गौएं भी ऐसे ही आनंद में जा रही हैं। गौओं के शरीर पे तरह तरह के आभूषण, और इन आभूषणों के साथ साथ उनके जो चरणों से ऊपर आने वाली जो रज है, धूली, वो भी ऊपर आ रही है। ये सुंदर दृश्य, ऐसे लग रहा था कि एक अमृत की नदी जो है वो बह रही है, रंग बिरंगी नदी। अब जब नदी बहती है तो रंग बिरंगी नहीं हो सकती ना, नदी पानी का कोई रंग होता है, या नीला रंग का हो, काला रंग का हो, सफेद रंग का हो, परंतु ये नदी है इसमें कई रंग थे। गौओं के जो सफेद रंग, फिर जो ग्वाल बालों के रंग बिरंगे कपड़े, और उन्होंने जो तरह तरह के धातु, पुष्प इत्यादि आभूषण के रूप में स्वीकार किए थे, उनके अलग अलग रंग, तो बहुत ही मनोहर एक दृश्य था, जिस दृश्य को देखने के लिए सारे वृंदावन के निवासी अपने घरों के छत पर जाकर देखते थे। गवों के गले में बांधे हुए जो घंटियां थे वो भी मधुर संगीत दे रही थी, किन 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 बजा रही थी, और जैसे ग्वाल बाल जो हैं वो अपनी ओर से कोई जय जय कर रहा है, कोई संगीत कोई गीत गा रहा है, कोई कुछ मजाक कर रहा है, उसी तरह से जो गाय हैं वो भी अपनी भाषा में बोल रही है। गायों की भाषा भी कृष्ण को बहुत पसंद आने लगी, वेदों के मंत्रों से ज्यादा। तो ऐसे करते करते सब गाय वापस आ रही, वो अपनी भाषा में बोल रही है और ग्वाल बाल उनकी भाषा में। तो सब जगह हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसा दृश्य हुआ होगा, ये लाखों लाखों गाय, हजारों हजारों ग्वाल बाल सब चलते आए, उधर कृष्ण भी झूमते झूमते बांसुरी बजाते बजाते बलराम जी के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार से ये दृश्य वृंदावन के निवासी देख रहे हैं, और साथ साथ जो धूल ऊपर आ रही है तो उससे भगवान श्री कृष्ण और भी सुंदर लग रहे हैं। अब धूल से जब हम बाहर जाते हैं धूल में, तो हमारे शरीर के ऊपर धूल आ जाती है तो हम सुंदर ज़्यादा नहीं लगते हैं, हमको आके स्नान करना पड़ता है। हम कहीं बाहर से आए तो हमारे शरीर में पसीना होता है, धूल होता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम स्नान करके आते हैं, ठहरो ठहरो अब बात नहीं करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनके शरीर पर जब पसीना आता है और उनके बालों में जब धूल आ जाती है तो उनका सौंदर्य तो बढ़ जाता है, वो और भी सुंदर दिखते हैं। और ये गोधूली का समय है, जब गाय वापस आती हैं तो उनके उनके चरणों के जो आवाज़ से और उनके प्रेशर से, जो दबाव से, इतना धूल ऊपर आता है कि सब जगह सूरज भी ढक जाता है गोधूली का समय। भीष्म देव भी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ऐसा ही एक वर्णन करते हैं। जब भीष्म देव तीरों की शैया में लेटे हुए थे, अपने मृत्यु की राह देख रहे थे, भीष्म देव तो उनके पास सारी योग सिद्धियां थीं और उनके पिता के आशीर्वाद के फलस्वरूप वो अपने मृत्यु का समय चुन सकते थे, और वो उत्तरायण का समय, उत्तरायण के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ये तो बाहरी कारण है, वास्तव में कारण ये था कि वो भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते अपना प्राण त्यागना चाहते थे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों को लेकर आए, भीष्म देव ने अपने अंतिम क्षणों में युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छे उपदेश दिए वर्णाश्रम धर्म के बारे में, अन्य कई विषयों के बारे में। और फिर इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने आंखों को केंद्रित करके वो कृष्ण की स्तुति करने लगे, कृष्ण का स्मरण करने लगे। तरह तरह के अवस्थाओं में, परिस्थितियों में जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा था तो उन दृश्यों को वो अपने मन में रख के उसका उच्चारण करने लगे, उसका वर्णन करने लगे। तो एक दृश्य जो भीष्म देव के मन में था उसका वर्णन वो करने लगे, और वो दृश्य है कि जब श्री कृष्ण सारथी के रूप में रथ के ऊपर सवार हैं, अर्जुन पीछे हैं तीर चला रहे हैं, और श्री कृष्ण बहुत तेजी से रथ को चला रहे हैं, हवा बह रही है, हवा की वजह से उनके बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि इतने सारे घोड़े चल रहे हैं तो ऋण भूमि से धूल उड़ रही है और वो भी कृष्ण के बालों में जाकर अटक रही है, और श्री कृष्ण ऐसे अवस्था में कितने सुंदर दिखते हैं, ये दृश्य भीष्म देव वर्णन कर रहे हैं। युधि तुरगर रजो विधूम्र विश्व कचलूलित श्रम वार्य अलंकृतास्ये मम निशित शरैर विभेद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधि मतलब युद्ध भूमि पर, तुरग रजह, तुरग मतलब घोड़े, रज मतलब वहां की धूली, तुरग रजह विधूम्र विश्वक, विधूम्र मतलब धूम्र की तरह धुएं का रंग, तो उस समय धुएं का रंग हो गया, किस चीज में हो गया, कचा, कचा मतलब उनके बाल, उनके बालों का रंग धुएं का रंग जैसा हो गया, इतनी धूल उड़ रही थी, और बाल कैसे थे? विश्वक, उड़ रहे थे हवा में, और लुलिता बिखर भी गए थे। श्रमवारी, बहुत पसीना आ रहा था श्री कृष्ण के ऊपर, शरीर के ऊपर। अलंकृतास्य, और भीष्म देव कहते हैं कि ये अलंकार था श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के ऊपर। साधारण व्यक्ति के ऊपर पसीना इत्यादि धूल ये अलंकार नहीं माना जाता, ये कोई प्रदूषण माना जाता है, गंदगी मानी जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर भीष्म देव कहते हैं ये एक अलंकार था, एक आभूषण के समान था। मम निशित शरीर विभिद्यमान, मम मेरे निशित मतलब धार वाले, तेज शरीर मतलब तीर, विभिद्यमान उनको छेद रहे थे, उनको लग रहे थे। त्वचि विलसत क्वचे अस्तु कृष्ण आत्मा, लेकिन विलसत कृष्ण इसमें आनंद ले रहे थे, भीष्म देव के तीर लग रहे हैं उनके शरीर के ऊपर, खून भी निकल रहा है, परंतु इसमें कृष्ण को कोई दुख नहीं हो रहा, कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि विलसत आनंद हो रहा है उनको। जैसे कि मानो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर फूल बरसाए तो हमें कैसे आनंद होगा, वैसे श्री कृष्ण को भीष्मदेव के तीर जो हैं वो फूल के समान प्रतीत हो रहे थे। तो भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं अस्तु कृष्ण आत्मा, इधर आत्मा मन को संबोधित करता है, आत्मा शब्द कभी आत्मा के लिए भी है, मन के लिए भी, शरीर के लिए भी। तो यहां पर भीष्मदेव कहते हैं कि वो चित्र मेरे मन में है, तो उस कृष्ण के चरणों में मेरा मन हमेशा रहे, मेरा मन हमेशा इस दृश्य के बारे में सोचते रहे। तो उसी प्रकार से और भी अधिक सुंदर दिख रहे हैं कृष्ण यहां पे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के सौंदर्य के बराबर और कोई दूसरा सौंदर्य नहीं है कृष्ण का भी। द्वारका में भी कृष्ण सुंदर लगते हैं, मथुरा में भी लगते हैं, लेकिन जितना सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन में लगते हैं उतना मथुरा और द्वारका में नहीं लगते। हालांकि द्वारका में भी श्री कृष्ण अति सुंदर है, लेकिन फिर भी तरतम्य ज्ञान, तरतम्य न्याय से परफेक्ट या परिपूर्ण, और भी परिपूर्ण, और भी श्रेष्ठ, परिपूर्णता की श्रेष्ठता। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ऐसे लौट के आते आते वृंदावन के निवासी सब राह देख रहे हैं। सारे वृंदावन में हर दिन दो प्रमुख घटनाएं होती हैं जिनके लिए, जिनकी राह जो है ब्रिजवासी देखते रहते हैं। वो कौन सी दो घटनाएं हैं बताइए? हाँ, कृष्ण के जाना और कृष्ण का वापस आना, आना जाना। बस सुबह सुबह जब निकल जाते थे तो सारे ब्रजवासी राह देखते थे, राह देखते थे इसके लिए नहीं कि कृष्ण चले जाएंगे, वो चाहते थे कि कृष्ण कभी नहीं चले जाए, परंतु वो जानते कि अब तो चले जाएंगे, दिन भर दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो अब जितना दर्शन करना अब कर लो। तो सब खबर फैल जाती थी कृष्ण जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो सारे गोप गोपियां, वरिष्ठ भी हों, युवती युवक भी हों, सब आते थे बाहर कृष्ण को देखने के लिए। और जब तक कि कृष्ण दूर दृष्टि के बाहर चले न जाए, तब तक देखते 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 फिर भारी सांस लेते हुए अपने अपने कामों के लिए वापस लौट के आते थे। गोपियां अपने दही का मंथन करने के लिए आ जाती, दूध का मंथन करने आ जाती थी, फिर गोप जो है उनके काम करने के लिए आ जाते थे, इस प्रकार से जाते समय। लेकिन आते समय और भी हर्ष होता था, क्योंकि अब दिन भर के विरह के बाद कृष्ण वृंदावन लौटकर आ रहे हैं। तो बड़े आतुरता से दिन भर उसकी प्रतीक्षा करते 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 वो इंतजार करते, और इसलिए इस समय जब श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं तो उनके हृदय के अंदर जो विरह की अग्नि जल रही थी, भगवान कृष्ण के शीतल अमृत तुल्य दर्शन से उनके विरह की अग्नि जो है उसका शमन हो जाता था, और इस प्रकार से वो आनंद का अनुभव करते। इस आनंद को केवल भक्त ही जान सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक शराबी है, अगर दूसरा कोई व्यक्ति शराब को पिए वो कहता है अरे ये तो कैसा आस्वाद है इसका, कुछ समझ भी नहीं आता इनको क्या अच्छा लगता है इस शराब में, लेकिन उनको अच्छा लगता है न जाने क्यों, वो ही जाने उनको क्यों अच्छा लगता है वो स्वाद, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। केवल शराब ही जान सकता है कि उसके बीच में क्या स्वाद है जिसके पीछे वो पागल हो गए। उसी प्रकार से भक्त ही जाने कि श्री कृष्ण के लीला में, उनके सौंदर्य में क्या जादू है, क्या मजा है, वो इस नशा में आते हैं। अभक्त नहीं जान सकते इस बात को। अभक्त तो केवल बोलते ये लोग पागल है क्या, कृष्ण कृष्ण के पीछे जा रहे हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, नाम लेते रहते हैं, वो क्या जाने भला, आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो समय है जबकि श्री कृष्ण गोवर्धन के कुंजों में और गोचर भूमियों में से गुजर के जब तैयारी कर रहे हैं वापस वृंदावन लौट के आने के लिए, उस समय ये वेणु गीत का आखिरी श्लोक का उच्चारण होता है, गोपियां करती हैं। तो ये है श्लोक क्रमांक 19, वेणु गीत का आखिरी श्लोक। और इसके बाद एक ही श्लोक है इस अध्याय में जिसमें शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियां किस तरह से कृष्ण की कथा करती रहती हैं। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं जो वेणु गीत का आखिरी श्लोक है। अब याद रखिए कि श्री कृष्ण अभी तक वन में ही हैं, एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं लेकिन आने की तैयारी कर रहे हैं। गा गोपकैरनुवनम नयतोरुदार, वेणुस्वणैकलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः, अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरुणां, निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्, गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार, वेणुस्वनैकलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः। अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरुणां, निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे सखियों, जब कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल से होकर अपनी गौएं लेकर गुजरते हैं तो वे अपने साथ दूध दोहने के समय गौओं की पिछली टांगे बांधने के लिए नोई लिए रहते हैं। जब कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं तो मधुर संगीत से चर प्राणी स्तब्ध रह जाते हैं और अचर वृक्ष आनंद से हिलने लगते हैं। निश्चय ही ये बातें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। तो इस वेणु गीत के आखिरी श्लोक में पुनः हम बांसुरी की ध्वनि सुन सकते हैं और दृश्य यह है, प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अब धीरे धीरे से गाह मतलब गौवे, गोपकैहि मतलब उनके जो गोप बालक मित्र, वो अनुवनम एक वन से दूसरे वनम में जा रहे हैं। तो यहां पर नयतोर शब्द का प्रयोग किया है, मतलब श्री कृष्ण उनका नेतृत्व करते हुए, नय धातु मतलब नेता, तो उनका नेतृत्व करते हुए उनको इधर उधर ले जा रहे हैं एक वन से दूसरे वन में। तो यहां पर गोपई शब्द ने इस्तेमाल किया हुआ है, गोपकैर। तो इसके बारे में क्या कारण है, ये क क्यों इसमें ज्यादा है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि क अक्षर का तात्पर्य है कि जो ग्वाल बालक हैं वो बड़ी सेवा भाव में थे, तो सेवा भाव की वजह से वो केवल गोपैर नहीं है, गोपकैर है, गोपक। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतनी तीव्र अनुकंपा या प्रेम था, इसलिए अनुकंपा से क तो गोपकैर। तीसरी बात कि गोपकैर ये गोपयति शब्द से संबंधित है, गोपयति मतलब रक्षण करना। तो जो ग्वाल बाल थे प्रेम की वजह से श्री कृष्ण का रक्षण कर रहे थे। जब माता यशोदा देखती हैं कि श्री कृष्ण भी जाने वाले हैं गौओं को चराने के लिए, तो उनको बहुत चिंता हो जाती कि कृष्ण के चरण कमल इतने नाजुक हैं और जंगल में इतने कांटे हैं, पत्थर है, तो मेरे लाडले कृष्ण को कैसे सहन हो पाएगा। तो इसीलिए वो चिंतित रहते हैं कि उनको संभालना चाहिए, और आगे चल के जंगल में इतना घूमेगा फिरेगा मेरा बच्चा, और कुछ खाएगा कम खाएगा नहीं खाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसके अलावा असुर तो आक्रमण कर ही रहे हैं, हर रोज कितने असुर आते हैं। तो बलराम को बुलाकर, अन्य गोप बालकों को बुलाकर कहती हैं कि अच्छी तरह से कृष्ण की रक्षा करना। एक दो अच्छे अच्छे आदेश देती हैं माता यशोदा कि कैसे कृष्ण के साथ में रहना चाहिए, कृष्ण को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो ग्वाल बाल भी माता यशोदा के इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ में ही रहते। वैसे भी माता यशोदा नहीं भी बोलती तो थोड़ी वो कृष्ण को छोड़ने वाले थे, लेकिन अब माता यशोदा के आदेश अनुसार वो और भी सतर्क रहते हैं श्री कृष्ण के की रक्षा के लिए। तो इसलिए गोपयति, अब जानते हैं कि वृंदावन में हर रोज एक दो असुर आया करते थे, कभी कभी ज्यादा भी। और आचार्य सब वैष्णव आचार्य कहते हैं कि हर रोज प्रसाद के पहले एक दो असुरों को खत्म करके फिर प्रसाद ग्रहण करते थे श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से गोपयति, तो गोपयति का और एक अर्थ ये भी है कि न केवल ग्वाल बाल कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे, परंतु कृष्ण भी ग्वाल बालों की रक्षा करते थे। गोपयति कैसे करते थे आप तो जानते हैं, जब इतने बड़े बड़े असुर आए जैसे अघासुर, तो सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख के अंदर प्रवेश कर गए। वो सोच रहे थे कि ये तो खेल के लिए कोई स्थान है, कोई गुफा है, इसमें हम जाएंगे, लेकिन गुफा नहीं था वो, वो अघासुर का खुला हुआ मुंह था। अघासुर तो मुख खोल के ऐसे बैठा हुआ था कि उनको अंदर आने दो, जैसे अजगर भी अपना मुंह खोल के बैठ जाता है जंगल में, जब कोई पशु वगैरह आता है तुरंत अपना मुंह बंद कर देता है, उसको निगल लेता है। तो ये अघासुर भी ऐसे ही बैठा हुआ था कि कृष्ण आएगा कृष्ण आएगा। तो ग्वाल बाल लोग सके एक एक के पीछे एक सब चले गए लाइन में, सोच रहे थे कि ये भी कोई गुफा है, इसमें खेलेंगे, जैसे गोवर्धन के गुफाओं में हम क्रीड़ा करते हैं। तो फिर कृष्ण भी अंदर चले गए इस बात को समझकर, और उसने बंद कर दिया मुंह, और अंदर ही से उसके पेट को फाड़ कर कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालकों को बाहर लेकर आए। तो ऐसे कृष्ण भगवान ने भी उनकी रक्षा की। जब दावानल हुआ, जंगल को आग लग गई दो बार, सारे ब्रजवासियों की रक्षा उन्होंने की। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ब्रज जन पालन उनकी रक्षा करने वाले, उनके पालक हैं श्री कृष्ण। हालांकि ब्रजवासी ऐसा नहीं सोचते, वो तो अपने प्रेम के पात्र समझते हैं कृष्ण को। असुर कुल नाशन, कितने सारे असुरों का नाश उन्होंने किया। तो इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते रहे प्रेम से। हालांकि कृष्ण की रक्षा भला कौन कर सकता है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम की वजह से ये एक भूमिका स्वीकार करते हैं कि मेरे भक्त मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते करते कृष्ण भगवान लीला करते रहे, इसलिए इनके मित्रों का नाम है, मित्रों को यहां गोप कैर कह के संबोधित किया गया है। वैसे असुरों का भय नहीं है गोपों को, अगर भय है तो केवल कृष्ण के विरह का, और इसलिए रात जब होने लगती है तो उनको बहुत बुरा लगता है कि अब रात भर हमको कृष्ण का संग नहीं मिलेगा। और आगे यह शब्द का प्रयोग किया हुआ है अनुवनम। अनुवनम मतलब एक वन से दूसरे वन, बार बार वनम में जाना। एक वन खत्म हो गया, गाय चर रही हैं, उसको छोड़कर दूसरे वन में जाना। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण किस लिए जा रहे हैं वन से वन? क्या केवल घास ढूंढने के लिए, गौओं के लिए? ये तो एक बाहरी कारण है, लेकिन श्री कृष्ण अपने लीला को और भी रमणीय बनाने के लिए, और भी मधुर और स्वादिष्ट बनाने के लिए, नए नए लीलाओं के लिए वो कुछ वो ढूंढ रहे हैं। वैसे श्री कृष्ण आत्माराम है, अपने सारे भक्तों से अपनी लीलाओं से संतुष्ट हैं, परंतु उनका आनंद जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। ये है गोलोक वृंदावन। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। भक्ति ये है कि जो हर पद में बढ़ती रहती है, बढ़ते रहती है, इसके अमृत का स्वाद जो है और बढ़ता है। ये अमृत का सागर है। अमृत अम्बुधि वर्धनम, इसका वर्धन होते रहता है। तो अपने लीलाओं की वृद्धि के लिए, मिठास की वृद्धि के लिए वो ऐसे घूमते फिरते हैं, नए नए नई नई लीलाएं करते हैं। इसलिए उनकी लीला नित्य नवनवायमान है, एवर फ्रेश, हमेशा ताजी रहती है, कभी घिसी पिटी जैसे नहीं हो जाती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में चलते रहते हैं। और यहां पर उदार वेणु स्वनैहि कलपदैहि, वेणु स्वदैहि कि वेणु की ध्वनि बजने लगती है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते चल रहे हैं और ये कैसे है, कलपदैहि कि सुनने के लिए बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है ये। और उदार, उदार मतलब सबको आनंद प्रदान करने वाला। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो सारे प्राणी, पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं, वृक्ष भी दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि कल शब्द का अर्थ यह भी है कि क्लीम, जो कि बीज मंत्र है वैदिक मंत्रों पंचरात्रि के मंत्रों में, और क्लीम के भीतर जो है सारे गोपियां इसमें आ जाती हैं। आपने जो दो दूसरी दीक्षा ली है आप इस क्लीम बीज मंत्र को जानते हैं, इसका महत्व क्या है, विशेष करके अर्चा विग्रह की सेवा में इनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से गा गोप कहिर न केवल गवों को और ग्वाल बालों को संबोधित करता है परंतु गोपियों को भी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते जा रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोपियां क्या, कौन से शब्द का प्रयोग कर रही हैं, विचित्रम। तो क्या विचित्र है, क्या अद्भुत है कृष्ण भगवान के बांसुरी बजाने में? तो इस श्लोक में गोपियां कहती हैं तनु भृत्सु कि जो भी प्राणियां हैं उनके ऊपर कुछ असर हो रहा है। कैसा असर हो रहा है इसका वर्णन करने जा रही हैं। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक है स्थावर और दूसरे हैं जंगम। स्थावर मतलब जो हिलते नहीं हैं, जैसे वृक्ष हैं पेड़ इत्यादि, और जंगम जो पशु पक्षी हैं जो हमेशा हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। तो अब स्थावर प्राणियों का स्थावर धर्म है, उनका धर्म है स्थावर रहना, वैसे ही रहना। और जो चर प्राणी है जंगम, उनका धर्म है कि इधर उधर घूमना। लेकिन बांसुरी के ध्वनि से वृक्षों का स्थावर धर्म बदल गया, पशुओं का पक्षियों का जंगम धर्म बदल गया, स्थावर जंगम हो गए, जंगम स्थावर हो गए। ये श्लोक में बताया हुआ है। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरूणाम। गतिमताम, गतिमताम मतलब जो जंगम है, जो चर प्राणी है, जो घूमते फिरते हैं, जैसे मृग हैं, अन्य पशु हैं, मोर हैं, अन्य पक्षियां हैं, और नदियां भी हैं, जिनका धर्म है, जिनका स्वभाव है चलना फिरना घूमना। लेकिन अस्पंदनम, स्पंदनम मतलब गति, लेकिन अभी वो अस्पंदनम हो गए, वो स्तब्ध हो गए हैं। कैसे हो गए? जो पक्षियां वृक्ष के शाखाओं के ऊपर बैठे हैं, उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पंख ऊपर किए, बांसुरी सुन ली, पंख वैसे के वैसे रह गए, जैसे प्रतिमा के समान वो शाखा के ऊपर रह गए पंख ऊपर करते करते। तो कह तरुणाम, तो तरुणाम मतलब वृक्ष जैसे और जो स्थावर प्राणी हैं उनके लिए क्या हुआ, पुलक है। पुलक मतलब दिव्य आनंद। तो उनके अंदर दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे, वृक्ष झूमने लगे, उनकी शाखाएं झूमने लगी, हिलने लगी, उनके पत्ते झरझर झरझर आवाज करने लगे, हालांकि इतनी हवा नहीं थी, फल जो है वो खिलने लगे। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं कि देखो श्री कृष्ण के बांसुरी का असर देखो कि सारे अस्तित्व को उल्टा कर देता है, सारे ब्रह्मांड के नियम को, सृष्टिकर्ता के नियम को उल्टा कर रहा है। सृष्टिकर्ता का नियम है कि वृक्ष इत्यादि स्थावर रहेंगे और ये पक्षी इत्यादि जंगम रहेंगे, लेकिन अब तो उल्टा हो गया, इसलिए ये बहुत ही विचित्र है। और ऐसा कह के फिर आगे गोपियां और वर्णन करती हैं, अस्पंदनम गतिमतम पुलकास्तरूणाम निर्योग प्राश कृत लक्षणयोर। ये एक तरह का पाश है जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम अब कभी कभी अपने हाथों में ले जाते हैं, कभी कभी अपने कंधों पे बांध के ले जाते हैं। निर्योग पाश कब इस्तेमाल किया जाता है? ये तो गोप बालक है ना, इसलिए उनका काम है गायों की रक्षा करना, दोहन करना गवों का। तो ये पाश का उपयोग कभी कभी गोप बालक या गोपगण करते हैं जब गाय दूध नहीं देना चाहती है या गाय लात मारती है कभी कभी, तो पीछे के पैर जो हैं गवों के बांध देते हैं, फिर आसानी से वो दूध निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो गाय है वो अपने बछड़े को दूध नहीं देना चाहती, या शायद जो बछड़ा है वो इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है, दूध नहीं पीना चाहता है, तो उस समय इस निर्योग पाश से उस बछड़े को माँ से बांध देते हैं ताकि माँ जो है वो दूध देने के लिए प्रेरित हो जाए और बछड़ा जो है वो भी दूध पीने के लिए प्रेरित हो जाए। कभी कभी अगर कोई गाय बहुत उछल रही है, कूद रही है, अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रही है, तो एक बहुत शक्तिशाली गाय से जो कि अच्छी तरह से चल रही है उससे बांध देते हैं ताकि इस गाय की वजह से ये नियंत्रण में आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो निर्योग पाश है कई कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कृष्ण के जो गाय हैं वो तो निश्चित रूप से बड़े सुशील हैं, वो कोई ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। जब गोपियां दोहन करने जाती हैं तो कभी कभी ऐसे थोड़ी गाय होती हैं जो कि सुनते नहीं हैं। आप में से जिन्होंने गाय का दोहन करने का प्रयत्न किया है आप जानते हैं कि कभी कभी गायों को दोहन करना कठिन होता है, कभी गाय छोड़ते नहीं है दोहन करने के लिए, फिर भी करना पड़ता है किसी तरह से युक्ति से। लेकिन जब कृष्ण सामने आते थे तो फिर सारे गाय संतुष्ट हो जाती थी। तो इसलिए ये निर्योग पाश ये उनका लक्षण है। गोपाष्टमी के दिन जगह जगह हमारे मंदिरों में कृष्ण भगवान के कंधों में ये पाश लगाया जाता है। तो अब आने वाले गोपाष्टमी में ऐसा करेंगे, कृष्ण भगवान के कंधे पे उनको गोप बालक का वेश देंगे और गोप बालक के वेश में साथ साथ कंधे पे ये उनके कर कमलों में एक पाश रस्सी जिसे वो गवों के लिए ले जाते हैं। वैसे कृष्ण भगवान ज्यादा इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल गोप बालक है ना, उनका धर्म है ना ऐसे कपड़े पहनना, इसलिए वो पहनते हैं, उनके लिए एक आभूषण की तरह है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं इस रस्सी को, पाश? ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, ये तो पीले रंग का है, सुंदर रेशम का बना हुआ है और उसके दोनों तरफ जो है मोतियों के झुंड है। और फिर उसको अपने पगड़ी में बांध देते हैं और पगड़ी के लिए एक आभूषण हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो भगवान इसको अपने वस्त्र को और भी सुंदर बनाने के लिए बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। तो बिभ्रद्वास, तो भगवान कृष्ण के कपड़े जो होते हैं वो भी बड़े आकर्षक होते हैं। भगवान अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, कैसे सजाते हैं, वन में प्राप्त होने वाले सब चीजों से, कोई फूल लेते हैं या कोई धातु लेते हैं, कोई और वस्तु जो मिल गया उसको लेते हैं, कभी कानों में एक फूल रख दिया, कभी दोनों कानों में रख दिया, कर्णयोः कर्णिकारम्, और कभी कुछ अच्छा मिल गया फूल तो अपने पगड़ी में डाल दिया। तो इस प्रकार से अपने वेश को और भी आकर्षक बनाने के लिए अपने पगड़ी में उन्होंने ये निर्योग पाश को बांध दिया और इतने आकर्षक लग रहे थे कि सारे वृंदावन के प्राणी विस्मित हो गए भगवान कृष्ण को इस सुंदर रूप में देखकर। ये भगवान कृष्ण का स्टाइल है। अब यहां हम देखते हैं कि लोग सड़क पर जाते जब वो भी अलग अलग स्टाइल करते हैं, है ना, कई बार अलग अलग समय पर लोगों में अलग अलग स्टाइल होता है। पहले पैंट्स पहनने के लिए भी अलग अलग स्टाइल होती, इतने बड़े नीचे होते थे, फिर अभी बीच में टाइट पैंट्स पहनते, अभी फैशन अलग अलग हो गए हैं अलग अलग स्टाइल से। हमने कई बार देखा है कोई नवयुवक होते हैं गले में वो रुमाल बांध देते हैं, वो भी एक तरह का स्टाइल है, एक तरह का फैशन है ना। कोई और कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो ये सब विकृत प्रतिबिंब है। क्योंकि ये मूल इच्छा जो कृष्ण में है अपने आप को सजाने के लिए, इसलिए यहां सब लोग कृष्ण की नकल करना चाहते हैं, तो सब अपने अपने अलग अलग तरह के फैशन, कपड़े, स्टाइल वगैरह करते हैं, लेकिन कभी भी कृष्ण की तरह आकर्षित नहीं हो सकते, दिख सकते वो। वास्तव में अगर हमने कृष्ण का श्रृंगार किया, कृष्ण को सजाया, उनके श्रृंगार के लिए वगैरह हमने व्यवस्था की, तो हमारे हृदय में जो अपने आप को सजाने की जो इच्छा है और दूसरों को दिखाने की, देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं या दिख रही हूं, वो इच्छा चले जाएगी। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री, फैक्ट्री चल रहे हैं केवल इसके ऊपर कि लोग अपने आप को दूसरों के सामने सुंदर और आकर्षक पेश करना चाहते हैं, है ना। करोड़ों करोड़ों रुपए की चीज चल रही है। तो लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे साधारण चीजों से अपने आप को सजाते हैं और कितने सुंदर दिखते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से इस आभूषण को लेकर भगवान श्री कृष्ण कभी पगड़ी में, कभी कंधे पे, इस प्रकार से चलते हैं। तो वैष्णव आचार्य बताते हैं कि ये जो रस्सी है, ये जीव और कृष्ण के बीच में जो प्रेम का बंधन है उसका प्रतीक है, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण जीव को बांध डालना चाहते हैं प्रेम के रस्सी से। और इसलिए निरोग पाश न केवल गायों को बांधने के लिए है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सबसे ऊंचे लीला का एक चिन्ह है। और वो सबसे ऊंची लीला क्या है भगवान की, कि वो अपने भक्तों को प्रेम से बांध देते हैं। सबसे ऊंची लीला जब भगवान श्री कृष्ण ये जो पाश है उसको ले जाते हैं गाय को बांधने के लिए, तो समझिए कि वो सोच रहे हैं कि किसी जीव को अभी प्रेम से बांध देना है। जब वो गाय का दोहन कर रहे हैं तो समझिए कि जीव के हृदय में जो भक्ति है उसको प्रेम भक्ति निकाल रहे हैं। और दूध का पान कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो रसिक शेखर है जो भक्तों के बीच में रस का आदान प्रदान का सेवन करना चाहते हैं। तो गोपियां जब देखती हैं कि पगड़ी में है, इसका मतलब है कि अभी किसी भक्त को बांध के रख लिया उन्होंने प्रेम से। और जब देखती हैं कि वो रस्सी उनके कंधे पे या हाथ में है, तो गोपियां सोचती हैं कि हाँ अब कौन वो भाग्यशाली जीव है जिसके ऊपर कृष्ण जाके रस्सी डाल के प्रेम से उसको बांध के पकड़ लेंगे। तो कोई तो अभी जीव है जो अब इस प्रेम का पात्र होगा, जो उस रस्सी से बंधा जाएगा अभी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने निर्योग पाश से सारे जीवों को प्रेम से बांधने का प्रयास करते हैं। ये है निर्योग पाश का अंदरूनी तात्पर्य। वैसे श्री कृष्ण तो सबको बांधते हैं अपनी प्रेम से, लेकिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को बांधती हैं उनकी प्रेम से। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की दृष्टि भी एक पाश है जो श्री कृष्ण को एक स्तर में बांध के रखती है। और यह है दूसरा अर्थ निर्योग पाश का, कि न केवल श्री कृष्ण अपने भक्तों को, जीवों को बांध के रखते हैं प्रेम से, लेकिन श्री कृष्ण को भी उनके भक्त बांध के रखते हैं। ये सारी दामोदर लीला तो आप जानते हैं, दामोदर अष्टकम इसलिए हमने आज प्रवचन के पहले गाया। दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि इस लीला का वर्णन करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांध के रखा, जबकि कृष्ण ने कोई शरारत की थी, कोई दूध के मटके, दही के मटके तोड़ फोड़ किए थे, और कृष्ण का पीछा करते करते आखिर माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ के उखल के सामने लाए। वैसे वो कृष्ण उनके हाथ में छड़ी थी, छड़ी से कृष्ण को पीटना चाहती थी, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण के मुख के ऊपर उन्होंने देखा कि आंसू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो माता यशोदा के मन में करुणा की भावना जाग गई और उन्होंने छड़ी फेंक दी, सोचे कि ठीक है मैं मारूंगी नहीं लेकिन बांध के रखूंगी। तो उखल के पास में ले जाकर बांधने का प्रयास किया, लेकिन हर समय रस्सी जो है दो उंगली कम पड़ती थी। जितना भी रस्सी था अपने घर में सब लाई वो, लेकिन फिर भी दो उंगली कम। वृंदावन में जितनी भी रस्सी थी सब लाए, लेकिन फिर भी दो उंगली कम। तो माता यशोदा की परेशानी को देखकर सारे गोपियां जो हैं हंसने लगीं, लेकिन अंततः श्री कृष्ण को कृपा हुई अपने माता के ऊपर, उन्होंने स्वीकार कर दिया कि ठीक है अब बांध दो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, क्या माता यशोदा ने रस्सी से कृष्ण को बांध दिया? नहीं, किससे बांध दिया? प्रेम से बांध दिया। इसलिए यहां पर सत्यव्रत मुनि इसी लीला का वर्णन करते हैं। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, सच्चिदानंद रूप कृष्ण लसत कुंडलम, उनके मकर कुंडल हैं और उनका चेहरा बहुत प्रकाशमान है, तेजस्वी है, और यशोदा माता से डर के यशोदा भियो लूखला धावमानम, डर के वो भाग रहे हैं और उनका पीछा कर रही है माता यशोदा। और फिर कृष्ण रोने लगते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, और काजल जो लगाया हुआ है वो सब बिखर जाता है। कराम भोज युग्मेन शतांक नेत्रम, फिर अपने हाथों से जैसे बच्चे रोते हैं और आंखों में उंगली डालते हैं वैसे ही वो करने लगे। मुहु श्वास कंपा त्रिरेखंक कंठ, और उनका भारी भारी सांस होने लगा, जैसे बच्चा घबरा जाता है रोने लगता है वैसे। और फिर स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, तो सत्यव्रत मुनि बताते हैं कि माता यशोदा ने वास्तव में भक्ति से बांध लिया श्री कृष्ण को, केवल रस्सी से नहीं। इस प्रकार से तदीयेषिता ज्ञेषु भक्ते जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे, कि जो श्री कृष्ण वास्तव में कभी भी जीते नहीं जा सकते, हराए नहीं जा सकते, वो प्रेम से जीते जा सकते हैं, भक्ते जितत्वम, भक्ति से ही केवल भगवान श्री कृष्ण जीते जा सकते हैं। इस प्रकार से इस सुंदर दामोदर लीला से हम सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से ही बांधा जा सकता है, इसलिए कृष्ण को दामोदर कहा जाता है, जिनके उदर दाम या रस्सी से बांधे गए। तो ये माता यशोदा के दामोदर ऐसे कहते हैं कृष्ण को। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि श्री कृष्ण के ऊपर श्रीमती राधा रानी क्रोधित हो गई, और उन्होंने एक नजर जब दी कृष्ण के ऊपर तो कृष्ण वहां पर खड़े हो गए, स्टैच्यू की तरह, प्रतिमा की तरह हिल नहीं सके, मानो कि उनकी नजर से, उनकी दृष्टि से श्री कृष्ण बंध गए हैं। तो वैष्णव आचार्य बताते हैं कि वो रहे माता यशोदा के दामोदर, लेकिन ये रहे श्रीमती राधा रानी के दामोदर। जैसे माता यशोदा ने प्रेम से कृष्ण को उखल से बांध दिया, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण को अपने दृष्टि मात्र से बांध सकती हैं। ये है प्रेम। तो ये भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं, गुणों के भंडार हैं श्री कृष्ण। और उनका एक गुण ये है कि हालांकि वो सब कुछ हैं, इतने शक्तिशाली हैं इत्यादि, षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, परंतु अपने भक्तों के प्रेम से पूरी तरह से निस्सहाय होकर बंध जाते हैं। भगवान कृष्ण कभी अपने भक्तों को, हृदय को त्यागते नहीं हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक सुंदर श्लोक है जो नवयोगेंद्र महाराज निमि को सुनाते हैं। इसका तात्पर्य भी बड़ा सुंदर है। विसृज्यते हृदयम् न यस्य साक्षाद् धरीर अवशापहितोऽप्यगगौगनाशः प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। विसृजति, विसृजति मतलब त्यागना, हृदयम न यस्य, हृदय को कभी नहीं त्यागते हैं हरि भगवान श्री कृष्ण। किनके हृदय को नहीं त्यागते हैं? उनके भक्तों के लिए, जो कि प्रणय रसनया धृत अंग्रि पद्मः, जिन्होंने धृत अंग्रि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को जिन्होंने पकड़ के रखा है, धृत अंग्रि ही, जिनके हृदय में प्रणय है, प्रणय के पाश से रसनया उन्होंने बांध के रखा है। रसनया मतलब रस्सी, प्रणय रसनया, तो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को बड़े जोर से पकड़ के रखा है तीव्र प्रेम की वजह से, तो ये प्रेम एक रस्सी बन जाता है, जिस रस्सी की वजह से श्री कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में बंध जाते हैं, हृदय को छोड़कर नहीं जा सकते। तो यहां अनुवाद इस प्रकार से है कि भगवान इन बद्ध जीवों के ऊपर इतने कृपालु हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके नामोच्चारण करता है केवल निस्सहाय होकर या न जानकर भी, फिर भी भगवान उस व्यक्ति के हृदय में जितने अनगिनत पाप हैं उनको नष्ट करते हैं। इसीलिए जब कोई भक्त श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है धृत अंग्रही और उनके नाम का उच्चारण प्रेम से करता है तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी ऐसे भक्त का हृदय त्याग नहीं सकते हैं। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात। उस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बांध देता है अपने ही हृदय के भीतर उसे भागवत प्रधान कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है। बिल्वा मंगल ठाकुर जो हैं वो हमारे वैष्णवों में से बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी उनकी कविताओं को बहुत सुनते थे, पढ़ते थे, उच्चारण करते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर पहले तरह तरह के कार्य करते थे। एक वेश्या से उनकी आसक्ति हो गई और उसके पीछे पीछे जाकर वो भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। परंतु उस वेश्या ने ही बिल्वा मंगल को याद दिलाया कि अगर जितने तीव्रता से तुम मेरे पीछे आ रहे हो, अगर तुम कृष्ण के पीछे जाते तो तुम शुद्ध भक्त बन जाते। तो ये बात चुभ गई, बैठ गई बिल्वा मंगल के हृदय में और वो घर छोड़कर निकल गए और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। छोड़कर जब जा रहे थे तो उस समय एक ब्राह्मण के घर में आए। वास्तव में कैसे है उस ब्राह्मण के घर में, उसकी पत्नी को देखकर जो ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी के पीछे पीछे आए। तो ब्राह्मणी घर में चली, अपने पति से कहा देखो ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। तो कोई साधु जैसे दिख रहे थे तो ब्राह्मण ने उनको घर में बुलाया कि क्या बात है, आपकी क्या सेवा हम करें। तो बिल्वा मंगल में सीधे कह दिया कि आपके पत्नी के प्रति हम आकर्षित हो गए हैं। तो उस समय वो पत्नी अंदर आई। फिर बाद में बिल्वा मंगल को इतना बुरा लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए मैंने घर छोड़ दिया। मैं वृंदावन की ओर जा रहा था और अचानक मैं इस ब्राह्मणी से आकर्षित होकर यहां पर आ गया, मैं तो कहीं पागल तो नहीं हो गया। तो इतना बुरा लगा उनको कि जब उस ब्राह्मण ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे केवल आपके पत्नी के बालों में जो पिन जो है बालों को रखने के लिए मुझे वो चाहिए। अरे ये क्या, ठीक है ले लीजिए। तो उन्होंने लिया और अपने आंखों में डालकर अपने आंख ही निकाल दिए। कहा कि इन आंखों की वजह से मैंने ऐसा काम किया, मैं जो कि व्रज में जा रहा था कृष्ण के शरण में, अब मेरे आंखों का कोई अधिकार नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये आंख जो कि मुझे ऐसे परिस्थिति में डालते हैं। और फिर ऐसे ही वो वृंदावन की ओर चले। लेकिन वृंदावन की ओर जाते जाते अब आंखें तो नहीं थी, कैसे देखते। तो एक छोटा बच्चा वहां पर आया और कहने लगा कि बाबा जी मैं आपको ले चलता हूं। तो उस बच्चे के साथ वो चलते गए, हंसी मजाक होता रहा, कृष्ण कथा होती रही। वो बच्चा इनको खिलाता पिलाता, हर तरह से ख्याल रखता। और फिर आखिर बच्चे ने कहा कि बाबा जी अभी हम वृंदावन पहुंच गए हैं, तो अच्छी बात है। तो फिर ऐसे कई दिन बीत गए, वो बच्चा और भी रहा बिल्वा मंगल के साथ। फिर एक दिन बच्चा कहने लगा बाबा जी अभी मुझे जाना है। नहीं नहीं अब तुम नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक बहुत लगाव हो गया था बिल्वा मंगल को इस बच्चे के साथ, अब मेरा कौन देखभाल करेगा। नहीं नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरी मैया बहुत मुझे डांटेगी, नहीं जाऊंगा तो। नहीं 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 मुझे छोड़ के नहीं जाना। फिर भी बच्चा जो है वो भाग के चले जाता है। बिल्वा मंगल बहुत कोशिश करता उनको पकड़ने के लिए, पकड़ लेता है फिर वो छूट जाते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, फिर वो छूट के निकल जाते हैं। और उस समय बिल्वा मंगल को पता चलता है कि ये बच्चा कौन है। जब पता चलता है तो फिर अपने मन ही मन में वो सोचता है और जोर से बोलता है कि अरे गोपाल तुम मेरे हाथों से निकलकर भाग गए, लेकिन मैंने तुमको मेरे हृदय में बांध के रखा है, मेरे हृदय से छोड़ के तुम कहां जाओगे भाग के, ये नहीं तुम कर पाओगे, मैंने तो तुमके अंदर बांध के रखा है, यहां से तो कहीं भी भाग कर नहीं जा पाओगे तुम। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते करते फिर बिल्वा मंगल ब्रज में निवास करने लगे। तो ये है भागवत प्रधान, जो हमेशा श्री कृष्ण को अपने हृदय में बांध के रख देते हैं। ये तात्पर्य है, कितनी सुंदर तरह से आचार्य ने इसकी टीका की है। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने हृदय को इतना स्वच्छ रखते हैं अपनी भक्ति की वजह से कि कोई अनर्थ नहीं रहते, और इसलिए श्री कृष्ण उस हृदय में आकर निवास करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी सज्जन जो है वो किसी गंदे जगह में जाके बैठना उठना नहीं चाहता। अगर वो कहीं जाता है तो साफ जगह में जाना चाहता है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण श्रेष्ठ सज्जन है, तो वो इस साफ हृदय में आना ही पसंद करते हैं। हमारे हृदय में अगर बहुत गंदगी है, काम क्रोध इत्यादि है, तो वो आकर यहां निवास करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हमारे हृदय भक्ति से शुद्ध हो जाता है तो फिर श्री कृष्ण वहां आकर निवास करना पसंद करते हैं। और जीव गोस्वामी भी इसी प्रकार से कहते हैं कि वास्तव में जिस भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है फिर भगवान उस हृदय को छोड़ना पसंद नहीं करते, वहीं पर रहना शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। कि यहां पर सारे जीव जो हैं इस प्रकृति के तीन गुणों से बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, अधीन हैं इन तीन गुणों के, और इसलिए उनको बहुत कष्ट होता है। ये श्री कृष्ण की प्रकृति है, तो श्री कृष्ण बद्ध जीवों को इन तीन गुणों के माध्यम से बांध के रखते हैं, क्योंकि ये जीव कृष्ण से विमुख हैं, कृष्ण के शरण में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब जीव अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर देता है, शरणागत हो जाता है, कृष्ण की भक्ति करता है और शुद्ध भक्त बन जाता है, तो फिर वो भक्त कृष्ण को बांध के रखता है भक्ति से। जैसे श्री कृष्ण उस जीव को पहले माया के जाल में बांध के रखते थे, अब यही जीव जब श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, वो अपने प्रेम के पाश से वो कृष्ण को बांध के रख देता है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, बद्ध जीव से मुक्त जीव, पहले जीव बद्ध होता है, अब कृष्ण बद्ध हो जाते हैं। ये भक्ति की परिपूर्णता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये निर्योग पाश रखते हैं अपने लिए, केवल गवों के लिए नहीं लेकिन सारे जीवों के लिए। अपने इस पाश से वो जीवों को भी बांध के रखते हैं और अन्य भक्त जो है वो उनको बांध के रखते हैं। परस्परम जो है भावयंतः, एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चलते आ रहे हैं और ये दृश्य गोपियां देख रही हैं। और इसलिए वेणु गीत आखिरी श्लोक में ये वर्णन कर रही हैं। जब ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण आ रहे होते हैं तो सारे देवी देवतागण भी आते हैं रास्ते में, कोई उनकी स्तुति करते हैं, कोई उनकी उपासना करते हैं, और ग्वाल बालों को समझ में नहीं आते ये लोग कौन हैं, कितने बड़े लोग हैं, देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, ये वो सब आ रहे हैं, चतुर्मुख कोई आ रहे हैं, पंचमुखी कोई आ रहे हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाते हैं। जब सारे देवता ऐसे हाथ जोड़कर वेदों की स्तुति बोलकर वो चले जाते हैं तो ग्वाल बालों की नकल उड़ाते हैं उनके जाने के बाद। कोई ब्रह्मा जी की तरह से हाथ चार मुंह लेके वो फिर ऐसे करेगा, ब्रह्मा जी की नकल करेगा, फिर कोई कृष्ण की टांग खींचेंगे, बोलेंगे देखो वो आदमी क्या बोल रहा था मालूम है, कि तुम सब बहुत इतने बड़े हो, तुम ये हो, ब्रह्मांडों के स्रोत हो, देखो सुना तुमने क्या बोला उसने कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण का मजाक उड़ाते थे, देखो ये हमारे कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों का उगम है क्या। ग्वाल बाल कभी विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके मित्र जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है। उनको तो बड़ा मजा लगा कि इतने बड़े बड़े लोग आके, कौन है ये पता नहीं, उनको आके नमस्कार कर रहे हैं। बड़े खुशी आनंद से कृष्ण भी इसमें आनंद लेते थे। कृष्ण कभी नहीं बोलते थे तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं तो हाँ सच्ची ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की वो सही है, भगवान ने ऐसे कभी नहीं कहा। क्योंकि इस सख्य रस में जो उनको आनंद है, वात्सल्य माधुर्य में जो आनंद उनको मिलता है, इन बड़े बड़े देवताओं की प्रार्थना से नहीं मिलता वो आनंद। तो फिर अभी वापस चले आए श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर, गवों को लेकर, सारे वृंदावन के निवासी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से श्री कृष्ण दूर से दिखाई पड़ रहे हैं, सब लोग वृंदावन के सीमा पर आए, अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव के सीमा में आए। और जब जैसे जैसे कृष्ण भगवान लौट कर आए, तो फिर सबसे पहले कृष्ण गौओं के अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग गोष्ठों में ले जाते हैं। थोड़े गर्भवती हैं उनको एक जगह, जिन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है वो एक जगह, जो और थोड़े जिनके बछड़े बड़े हो गए हैं वो और एक जगह, जिनके अभी कोई बछड़े नहीं है उनको और एक जगह। ऐसे श्री कृष्ण उनको अलग अलग अपने गौशालाओं में ले जाते हैं और फिर वो दोहन करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन नंद महाराज कहते हैं, नहीं नहीं तुम चलो, अभी चलो, बहुत हो गया, अभी हम लोग सब कर लेंगे, दोहन कर लेंगे। और फिर मधुमंगल कहते हैं, अरे कृष्ण चलो चलो, अभी हमें बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, अपने प्राण बचाने के लिए हमें भी खाना होगा, चलो चलो जल्दी चलो। फिर अपने प्रेम भरे शब्दों से वरिष्ठ गोप गोपियां भी और ग्वाल बालक भी कृष्ण बलराम को ले जाते हैं और माता यशोदा अच्छी तरह से उनको नहलाती हैं और फिर भोजन के लिए बिठाते हैं। और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण बलराम फिर प्रसाद लेते हैं। उधर सारे ग्वाल बाल बड़े उदास हो जाते हैं कि अभी हमको कृष्ण को छोड़ के जाना है, अगला सुबह कब आएगा, सुबह कब आएगा, सुबह कब आएगा जबकि हम फिर से कृष्ण के साथ हम निकल सकते हैं। तो इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की कल्पना कर रही हैं। और इसके साथ वेणु गीत समाप्त होता है। इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, आज दोपहर हम चर्चा करेंगे, आज रविवार है, और फिर कल सुबह से भागवत का अगला अध्याय आरंभ होगा जो वस्त्रहरण लीला है, और उसके बाद अन्य भी भगवान की लीलाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
जी, हरे कृष्ण। ये निर्योग पाश में और त्रिगुण के पाश में क्या अंतर है? क्या वो भी भगवान की शक्ति है, वो उनके पास में पाश है, ये भी निर्योग पाश भगवान की ही है, दोनों पाशों में क्या अंतर?
एक दोनों ही प्रेम के पाश हैं। जिस महामाया में भगवान जीवों को बांध के रखते हैं वो भी प्रेम का ही लक्षण है। जैसे जब माता पिता बच्चे को डांटते हैं, कोई दंड देते हैं, वो भी प्रेम का ही लक्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बद्ध जीवों को माया के जाल में, त्रिगुण जाल में बांध के रखते हैं, तो वो भी उनके प्रेम का ही एक प्राकट्य है। परंतु जीवों को उस समय बहुत दुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो भगवान से विमुख हैं। और भगवान का उद्देश्य है कि ऐसे माया के जाल में बांधकर जब उनको दुख की अनुभूति होगी, तो फिर वो समझेंगे कि ये हमारे लिए सही स्थान नहीं है, हमें कृष्ण के शरण में जाना होगा। तो ताकि वो समझ लें कि स्वतंत्र भावना से भोग करने की वृत्ति को त्यागना चाहिए, इसीलिए वो उनको तीन गुणों के फांस में बांध देते हैं। लेकिन जो योग माया है वो है, वो भी प्रेम का बंधन है। लेकिन इस प्रेम के बंधन में भगवान श्री कृष्ण खुद बंध जाते हैं और इन जीवों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। दोनों को दिव्य आनंद मिलता है। जब माया के जाल में, महामाया के जाल में फंस जाते हैं, तो उस समय जीवों को यह पता नहीं चलता कि मेरा स्वरूप क्या है और कृष्ण की सेवा करने में कितना आनंद है। लेकिन इस निर्योग पाश में, प्रेम के पाश में, जीवों को भी और कृष्ण को भी बहुत दिव्य आनंद मिलता है, जो कि बढ़ते रहता है, सदा जिसकी वृद्धि होती रहती है, ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं। तो एक योग माया है और दूसरे महामाया है। शक्ति एक ही है क्योंकि शक्तिमान एक ही है, लेकिन शक्ति अपने आप को अलग अलग रूप में प्रकट करती है। जैसे बिजली है, बिजली को आपने फ्रिज में से डाल दिया तो ठंडक पैदा करता है, और एक हीटर में से डाल दिया तो गर्मी पैदा करता है। बिजली बिजली है, बिजली ना तो ठंडा है ना गर्म, बिजली एक ही जगह से आती है। ठीक उसी प्रकार से ये माया शक्ति एक ही है, लेकिन जब उसका प्रयोग अलग अलग प्रयोजन से होता है, उस समय इसका असर अलग अलग पड़ता है। बद्ध जीवों के लिए इसको माया शक्ति कहते हैं और शुद्ध जीवों के लिए इसको योग माया शक्ति कहते हैं। एक से भगवान की विस्मृति बढ़ जाती है, दूसरे से भगवान की भक्ति बढ़ जाती है। ठीक है,
जो वृंदावन में अभी आपने वर्णन किया एकदम सुंदर तरह से, क्या वहां भी ऐसा कोई फेस्टिवल है जैसे कि यहाँ दीपावली मनाते हैं?
वहां कोई उत्सव है कि नहीं? वहां तो हर क्षण उत्सव है, हर दिन उत्सव है। जहां कृष्ण है नित्योत्सवम न तत्रिपुर, वो ब्रजवासी जो हैं वो कभी थकते नहीं उत्सव मनाने से, क्योंकि कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए श्रेष्ठ उत्सव है। हम लोग जन्माष्टमी साल में एक बार मनाते हैं, दो दिन तीन दिन के लिए, बड़ा उत्सव हो जाता है, सब लोग कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, लेकिन वृंदावन में तो सदैव कृष्ण केंद्र में रहते हैं, हर दिन वहां उत्सव है। और खास करके जब श्री कृष्ण का जन्मदिन वगैरह होता है तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैसे नंदोत्सव नंद महाराज ने मनाया, वो लोग दीपावली वगैरह भी मनाते हैं, सारे उत्सव मनाते हैं, लेकिन हर उत्सव में कृष्ण ही केंद्र बिंदु है। ठीक है।